हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शबाना सैफी और आज हमारे साथ है मुबीन सर और आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो सर हमें बताएंगे कि व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन है क्या?
वेल, मेडिटेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन मेक आवर माइंड पीसफुल एंड बॉडी हेल्दी एंड इन अनदर सेंस It is the process through which we can live in present. That is very difficult. Present में जीना बच्चों के लिए आसान है। बच्चे जो होते हैं वो present में जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम लोग, वैसे वैसे या तो past में जी रहे होते हैं या future में जी रहे होते हैं, है नहीं? तो ये जो है एक present में जीने का तरीका भी डेवलप करता है, अपने माइंड को एक ट्रेनिंग देता है जो प्रेजेंट में जीने के लायक बने। और जो पहले बताया था मैंने, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन, हमारे माइंड को पीसफुल बनाता है। कैसे? हम जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन में होते हैं, इसका रीज़न क्या है? हमारे ब्रेन के केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसे बैलेंस करने के लिए चाहिए पीसफुल माइंड। जब पीसफुल माइंड होता है तो सारे केमिकल्स जो ब्रेन के इम्बैलेंस हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं, और जब बैलेंस्ड हो जाते हैं तो अच्छा फील करते हैं, और जब हम अच्छा फील करते हैं तो उस फीलिंग का इफ़ेक्ट हमारी पूरी लाइफ पर पड़ता है। क्योंकि हम जब अच्छा फील करेंगे तो लोगों से अच्छे अच्छे से बात करेंगे, उससे रिलेशंस बेहतर होंगे। जब हम अच्छा फील करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। हमारे थॉट प्रोसेस का असर हमारी बॉडी पर होता है, जो पहले एपिसोड में हमने बताया था। तो एक मेडिटेशन के थ्रू हम लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। सारा खेल जिंदगी का कहाँ से है? ये है ब्रेन और आपके थॉट से। आपका 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 ब्रेन जितना बेहतर होगा उतना लाइफ बेहतर होगी। रीज़न? क्योंकि सारे हम डिसीजन लेते हैं अपने ब्रेन से, और ब्रेन आपका अगर इम्बेलेंस्ड होगा तो लाइफ के हर एक पहलू पर असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही वर्स्ट हो सकता है। इसी वजह से मेरा जो जोर रहता है वो ये समझाने पर रहता है कि मेडिटेशन इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले हमें रीज़न पता होना चाहिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जब इम्पोर्टेंस मालूम पड़ जाती है उसकी तो लोग करते हैं, लेकिन जब तक नहीं मालूम होता, जस्ट हम ऊपरी तौर पर बताते हैं उन्हें, तो वो करने के इच्छुक नहीं होते। लेकिन जब रीज़न होते हैं स्ट्रॉन्ग, बेहतर, और उन्हें लगता है कि हाँ ये तो बहुत बेहतर है, उन्हें लगता है रीज़न स्ट्रॉन्ग है, तो वो करने के लिए रेडी होते हैं और उसे अपनाते हैं, और उसका इफ़ेक्ट जब देखते हैं लाइफ पर अमेजिंग होता है। जब अमेजिंग इफ़ेक्ट देखने के बाद वो दूसरों को रिकमेंड करते हैं, लेकिन जब तक उसका इफ़ेक्ट नहीं देखते वो, तब तक उसे केवल वर्ड मानते हैं मेडिटेशन, और एक बोरिंग चीज़ मानते हैं, है नहीं? तो आप देखें कि बच्चे जो होता है कितना खुश होता है बचपन में, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीता है। प्रेजेंट में जीना, इसका मीनिंग है कि खुश रहना। आप एंटिसिपेट करते हैं ज़्यादातर कि लाइफ में आगे क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि हम जिन बातों की चिंता करते रहे हैं, 100 में से 90% वो बातें घटती नहीं हैं, होती नहीं हैं। और जिनके पीछे हमने कितनी एनर्जी, कितनी टेंशन, कितनी एंग्जाइटी पाले रखी थी, वो कभी हुई नहीं। 90% ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में कभी नहीं होती, लेकिन हम पहले से चिंता करते हैं, यानी कि हम फ्यूचर का एंटिसिपेशन करते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया, प्लानिंग करते हैं, और मालूम पड़ता है वो समय बीत गया, वो बात ही नहीं हुई। और पास्ट का हम रिपेंट करते हैं, पास्ट में कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अच्छा होता वहाँ वो उस समय डिसाइड हमने सही नहीं किया, इस वजह से, मतलब प्रेजेंट में जीने का वक्त ही नहीं मिलता। दो पार्टों के बीच में प्रेजेंट का जो मामूली पल है, एक क्षण भर, वो दबा जा रहा है। या तो हम पास्ट में होते हैं या हम फ्यूचर में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के मोमेंट जो जीने लायक है उस मोमेंट को हम खो देते हैं, और वही मोमेंट होता है जीने का। ना तो आप प्रेजेंट में प्रेजेंट में ही आप डिसाइड कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, दोनों काम प्रेजेंट में ही आप एक्शन ले सकते हैं, प्रेजेंट में डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। पास्ट में जाके आप कोई एक्शन नहीं कर सकते और पास्ट में जाके आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इसी तरह से फ्यूचर में भी आप कोई एक्शन नहीं कर सकते, कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हम ऐसा डिसीजन का और एक्शन का जो मोमेंट होता है वो होता है प्रेजेंट, जो हम खो देते हैं, है नहीं। तो मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो हमको प्रेजेंट में रहने की हैबिट डेवलप करता है, एक ट्रेनिंग है, है नहीं। जब हम इसे अपनाते हैं और उसके इफेक्ट देखते हैं तो इसका हमें अंदाजा तब होता है कि ये किस तरह से असरदार हो रहा है, है नहीं। और आप देखें मोस्टली डिसीजेस जो हैं वो साइकोसोमेटिक होती हैं, मतलब उनका किसी बाहरी वातावरण से कोई लेन देन नहीं होता है। 90% ऐसी बीमारियां हैं जो केवल साइकोलॉजिकल इम्बेलेंस की वजह से होती हैं, ब्रेन के केमिकल्स के बीच में जो इम्बेलेंस आ जाता है उनकी वजह से होती हैं। यानी कि इम्बेलेंस अगर ब्रेन में है, केमिकल्स के बीच में है, तो आप ईज और डिसीज, ये डिसीज क्या, डिसीज का ईज का अपोजिट है ना, तो ईज में नहीं है आप, यानी कि आप सुकून में नहीं है, तो आप डिसीज है आप, ईज, और डिसीज इज द अपोजिट ऑफ ईज। तो ईज में रहने के लिए मेडिटेशन एक बेहतर एक मीडियम है, जिसे अपनाने के बाद हम अपनी लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं और आप एक हैप्पी लाइफ कब मानेंगे। आप जब मानेंगे हैप्पी लाइफ, जब आप फिजिकल वेलबींग हो आपके पास, है नहीं, आपके पास इकोनॉमिक वेलबींग हो, आपके पास सोशल वेलबींग हो और आपके पास इमोशनल वेलबींग हो, इसी तरह से साइकोलॉजिकल वेलबींग हो, स्पिरिचुअल वेलबींग हो। ये लाइफ के डिफरेंट पहलू हैं जो एक खुश जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सारे पहलुओं को बैलेंस करने के लिए, इन सारे पहलुओं को नर्चर करने के लिए जो एक साधन लगता है मुझे पर्सनली, वो एक मेडिटेशन है, जिसका हम अपनी रियल लाइफ में यूज करके उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। 90% ऐसी बीमारियां हैं जो केवल साइकोलॉजिकल इम्बेलेंस की वजह से होती हैं, ब्रेन के केमिकल्स के बीच में जो इम्बेलेंस आ जाता है उनकी वजह से होती है। अगर ब्रेन में है, केमिकल्स के बीच में है, तो आप ईज और डिसीज, ये डिसीज क्या, डिसीज का ईज का अपोजिट है ना, तो ईज में नहीं है आप, यानी कि आप सुकून में नहीं है, तो आप डिसीज है आप, ईज, और डिसीज इज द अपोजिट ऑफ ईज। तो ईज में रहने के लिए मेडिटेशन एक बेहतर एक मीडियम है, जिसे अपनाने के बाद हम अपनी लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। और आप एक हैप्पी लाइफ कब मानेंगे, आप जब मानेंगे हैप्पी लाइफ, जब आप फिजिकल वेलबींग हो आपके पास, है नहीं, आपके पास इकोनॉमिक वेलबींग हो, आपके पास सोशल वेलबींग हो और आपके पास इमोशनल वेलबींग हो, इसी तरह से साइकोलॉजिकल वेलबींग हो, स्पिरिचुअल वेलबींग हो। ये लाइफ के डिफरेंट पहलू हैं जो एक खुश जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इन सारे पहलुओं को बैलेंस करने के लिए, इन सारे पहलुओं को नर्चर करने के लिए जो एक साधन लगता है मुझे पर्सनली, वो एक मेडिटेशन है, जिसका हम अपनी रियल लाइफ में यूज करके उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं।
ओके सर, Why do we meditate? हम meditation करें क्यों?
देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, ये life के different पहलुओं को impact करता है, thinking process को positive करता है और आपके perception को change करता है, यानी कि perception को positive बनाता है। तो ये तो मैंने पहले बताया हुआ था। इसके अलावा जो चीज़ें बताई जा सकती हैं अभी, क्योंकि इसके फ़ायदे जो हैं इतने unlimited हैं कि इसे गिनाए जाएं तो कुछ तो मुझे भी नहीं पता, बहुत थोड़े से फ़ायदे मुझे पता हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत अमेजिंग है। लेकिन इसके फ़ायदों की बात करेंगे, क्यों करें, तो ये अनलिमिटेड है कि क्यों करें, इसके हर एक पहलू पर हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम देखें कि मेडिसिन जो होता है, जब हम कोई बीमार हो जाते हैं हम तो मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन एटॉमिक लेवल पर काम करता है, लेकिन मेडिटेशन सब एटॉमिक लेवल पर काम करता है, यानी कि वो अंदर से बीमारी को ख़त्म करता है। सेल्स के अंदर एटम, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पर इम्पैक्ट करता है। तो जब ये असर किसी दवाइयों में ऐसा नहीं हो सकता जो मेडिटेशन करता है, इसकी अहमियत को हमें समझना होगा, तभी हम एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और जब कोई डिसीज़ हो भी जाती है तो जो जो पीसफुल माइंड का है, जो खुश रहता है, जिसका ब्रेन बैलेंस्ड है, सारे केमिकल्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो वो बीमारी उसको बहुत ही जल्दी क्योर कर लेगा, अगर होती भी है तो। लेकिन एक एक इम्बैलेंस्ड माइंड बीमारी को बढ़ावा देता है। हमारी बॉडी ही एक बहुत बेहतर डॉक्टर है, जो हमारी बॉडी के बारे में उससे बेहतर किसी को नहीं पता, यानी कि वो बीमारियों का खुद ब खुद इलाज करती है। शर्त ये है कि आपका मन खुश होना चाहिए, आपको कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो आपकी बॉडी, आपका डॉक्टर इतना बेहतर काम करता है हर एक बीमारी में कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और जो बॉडी का नेचुरल नेचर है वो खुश रहना है, हेल्दी रहना है। बट जनरली ऐसा क्यों नहीं होता, जनरली क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि हम जो है एंग्जाइटी, टेंशन, डिससेटिस्फेक्शन और कंपैरिजन, है नहीं, नेचुरल फूड का ना होना, जो अभी हम देखते हैं डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा होना, ये रेस है, हो गई है एक लाइफ। मतलब जब हम रेस में इसे फील करते हैं तो हम खुद को नहीं देखते, हमारी निगाहें बाहर होती हैं, हमारा सारे सेंस ऑर्गन्स बाहर की तरफ, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स जो है बाहर ही देख पाते हैं, हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स जो हैं बाहर का फील कर पाएंगे, अंदर क्या हो रहा है नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन खुद के अंदर को फील करने का एक साधन है, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स बाहर की तरफ खुलते हैं, अंदर की तरफ कोई सेंस ऑर्गन नहीं खुलता। इस वजह से अगर आप खुद को अवेयरनेस के साथ देखना चाहते हैं तो आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं, और वो मन की आंखें तब देखेंगी आपको जब आप मेडिटेटिव स्टेट में होंगे। इसका एक करने का सबसे बेहतर रीजन यही है कि आपकी अवेयरनेस आपके प्रति बेहतर होगी, और जब अवेयरनेस बेहतर होगी तो आपका ध्यान बाहर के डिस्ट्रैक्शन पर कम होगा, और आपका ध्यान अपने ब्रेन पर, अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर, अपने अंदर झांकने का एक मीडियम है मेडिटेशन ना। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में इसका, वो अमेजिंग है, और आप इसे फील करेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस का काम है, पहले आपको इसे अपनाना होगा, तब रिजल्ट आप देखेंगे इसका।
ओके सर, व्हाट इज द राइट वे टू मेडिटेट, हम मेडिटेशन कैसे करें, मींस मेडिटेशन करने का सही तरीका है क्या?
देखिए, मेडिटेशन कुछ ना करने का नाम है, मेडिटेशन में कुछ कर रहे हैं अगर आप तो वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। जब आप मेंटली और फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन किसी के करने का नाम नहीं है। मेडिटेशन अगर कोई एक्टिविटी हो रही है फिजिकली और मेंटली तो वो मेडिटेशन नहीं है। यानी कि आप जो है जब अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ब्रेन वेव्स को बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हैं और ज़्यादा बेहतर मेडिटेशन तब कहलाता है। यानी कि डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं और वो जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हमारी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बीटा पे होती है, है नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग 13 से 39 के बिटवीन जब फ्रीक्वेंसी होती है थॉट्स की, तो वो बीटा कहलाता है। नहीं, इससे ज़्यादा होती है तो एक गामा स्टेट होती है, वो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली स्टेट है ना। तो मेडिटेशन करने के बाद हम इस फ्रीक्वेंसी को स्लो डाउन करते हैं, है नहीं, पहले नॉर्मली बीटा मैंने बताया था, और भी तीन लेवल नीचे जाएं हम, बीटा के बाद लेवल जो होता है वो होता है आपका गामा, ये इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें 32 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक होती है। ये मतलब एक ये तब होता है जब ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हों, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तब आपका ये उनकी फ्रीक्वेंसी का लेवल होता है। लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में जो होता है वो होता है आपका एक बीटा लेवल, जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में फील करते हैं। इसके बाद होता है एक इससे और कम फ्रीक्वेंसी का अल्फा, जो हम जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो वो लेवल स्टार्टिंग में हम पा लेते हैं। इसके और नीचे जाएं अगर हम तो वो होता है आपका थीटा लेवल। थीटा लेवल होता है जब हम मेडिटेशन की सही स्टेज पर पहुंच जाते हैं, है नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 8 हर्ट्ज, है नहीं। और एक लास्ट जो होता है वो होता है डेल्टा, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 4। और जो जो बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल माइंड की एक ब्रेन वेव्स हैं वो आपका लेस देन 4 होती हैं। जनरली कितनी बताई थी मैंने, जनरली बताई थी बीटा लेवल जो होता है 13 to 32, और थोड़ा टेंशन में होता है ब्रेन तो उससे बढ़ जाता है, फिर पहुंच जाता है गामा लेवल पर। तो मेडिटेशन आपने जो क्वेश्चन किया था उसे करें कैसे, वो आप बड़ा सिंपल है, इसके लिए आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप जैसा कंफर्टेबल फील करें आप बैठ जाएं, स्ट्रेट बैकबोन रखें, है नहीं। जब स्ट्रेट बैकबोन रखेंगे तो आप अपने दोनों हाथों को जैसा कंफर्टेबल फील करें वैसा आप रख सकते हैं, है नहीं। ये ध्यान रखें कि आपकी बॉडी बिल्कुल लूज हो लेकिन आपकी जो बैकबोन हो वो स्ट्रेट हो, है नहीं। उसके बाद आंखें बंद करें, और आंखें बंद करने के बाद आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, जिसे हम विपस्सना कहते हैं, सांसों पर ध्यान देना। सांसों पर जब ध्यान देंगे हम तो आपके माइंड में विचार आएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है एक थिंकिंग मशीन है, आएंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, लेकिन उसे स्टक ना हो, उससे चिपके नहीं, आने दें, विचारों को जाने दें, जो आता है विचार उसे ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करने के बाद उससे चिपके नहीं, उसे जाने दें, लेट इट बी, लेट गो, ओके। नए विचार आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तो आपका थिंकिंग जो थॉट्स आ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, है नहीं। और 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये प्रोसेस और स्लो हो जाएगा, है नहीं। जैसे जैसे स्लो होगा प्रोसेस विचारों के आने का ब्रेन में, वैसे वैसे आप जो है अपने ब्रेन वेव्स को की फ्रीक्वेंसी को कम करते जा रहे हैं, है नहीं। लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको नींद भी ला सकता है, है नहीं, ये कुछ समय तक नींद भी आपको आ सकती है, क्योंकि जब सुकून में बॉडी होती है तो आप फील करते हैं कि जस्ट सो जाएं, है नहीं। लेकिन इसे आप कंटिन्यू रखें, कुछ समय बाद इस प्रॉब्लम से आप निजात पा लेंगे। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो उसे कंटिन्यू रखें कुछ समय तक, है नहीं। कुछ समय बाद ये नींद नहीं आएगी, ये आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगी, यानी कि आपकी नींद को अंदर से खोलेगी, है नहीं। आपकी आपकी आंखें देखती हैं बाहर की चीजों को, आपकी मन की आंखें तेज होंगी, है नहीं। तो मेडिटेशन करने का एक सिंपल वे है, और वो वे मैंने आपको बताया था, अपनी सांसों पर गौर करें। पहले पॉस्चर देखा जाता है, पॉस्चर किस तरह का है, पॉस्चर हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी लूज होनी चाहिए, सांसों पर ध्यान होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहां पर कोई साउंड ना हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, है नहीं, जिससे कि हम अपने को अपने अपने माइंड को अपने सांसों पर ध्यान दे सकें। अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो अपने विचारों अपना ध्यान अपने सांसों पर नहीं दे पाएंगे, हम अपना ध्यान अपने विचारों पर नहीं दे पाएंगे। तो बेहतर वे यही है स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए, वैसे कई एक टाइप के मेडिटेशन होते हैं लेकिन स्टार्ट करने के लिए, और ये गौतम बुद्ध का वे है नहीं, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस इसमें प्रैक्टिकल्स किए कि कौन सा वे बेहतर है, तो ये लास्ट वे उन्हें मालूम पड़ा कि ये वे बेस्ट है, जिसे उन्होंने नाम दिया विपस्सना।
ओके सर, थैंक यू सो मच, आज हमें नए नए पहलुओं पर गौर करने का मौका मिला, हमें आपने मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद सर,
थैंक यू।
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.